Hare Krishna. तो आइए भगवान के चरणों का ध्यान करेंगे. सब एकाग्र मन करने के लिए भगवान श्री श्याम सुंदर के चरणों का ध्यान कीजिए और मेरे पीछे इस मंत्र का उच्चारण कीजिए. ओम नमो भगवते वासुदेवाय. ॐ नमो भगवते वासुदेवाय. वासुदेवाय. कृष्णाय वासुदेवाय. देवकी नंदनाय च नंद गोप कुमाराय गोविंदाय नमो नमः. जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभो नित्यानंद. श्री अद्वैत गदाधर श्रीवास आदि गौर भक्तवृंद. हरे कृष्णा 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 हरे 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 रामा 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 हरे 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 बोल श्री कृष्ण भगवान की. तो आबू रोड निवासी आप सबका स्वागत है पुनः आज दूसरे दिन की हरि कथा में. भगवत कथा भगवत गीता और भागवत के ऊपर आधारित इस हरि कथा में तो चर्चा चल रही है दो दिन से कि सत्संग का लक्ष्य क्या होता है, सत्संग का उद्देश्य क्या होता है. हरि कथा और सत्संग. सत का अर्थ होता है भगवान और संघ का अर्थ होता है उसके साथ अपना संबंध स्थापित करना. तो सत्संग का अर्थ होता है भगवान के साथ अपना रिश्ता स्थापित करना. सत्संग का उद्देश्य होता है भगवान के साथ अपना संबंध तोड़ना. भगवान संघ का एक संघ से संगत शब्द निकला है और संगत से संगति शब्द निकला है, उसका अर्थ है दोस्ती. भगवान के साथ अपनी दोस्ती करना. तो सत्संग का अर्थ है कि भगवान के साथ अपना रिश्ता स्थापित करना. इसका मतलब है कि सत्संग के अंदर क्या कहना चाहिए जो भगवान के विषय में हो अथवा जो भगवान ने कहा हो उसी का ही वर्णन करना चाहिए. तो भगवान ने क्या कहा है, भगवान ने स्वयं अपने मुखारविंद से भगवत गीता कही है. तो भगवत गीता के ऊपर चर्चा करना सत्संग है. भागवत भगवान की महिमा गाई गई है तो भागवत के ऊपर चर्चा करना सत्संग है. तो सत्संग का उद्देश्य होता है कि सत्संग करने वाले के लिए श्रीमद् भागवत में ये किए परीक्षित महाराज सुखदेव महाराज की महिमा गाते हैं कि सत्संग करने वाला कैसा होना चाहिए. सत्संग करने वाला कैसा होना चाहिए तो सत्संग करने वाला सुखदेव गोस्वामी होना चाहिए। कि भाई सुखदेव गोस्वामी में कौन सी विशेषता है, कि उसके सत्संग सुनने से क्या विशेष लाभ होता है, तो कहते हैं निवृत्त ऋषि उपगीय मानाय भव औषधि मनोभिरामा। अगर ऐसा सत्संग सुखदेव गोस्वामी आप जैसे महात्मा के द्वारा सुना जाए तो भव जो रोग है, भव का मतलब है जन्म मृत्यु, भव सागर कहते हैं इस संसार को जिसके अंदर हम सब डूबे हुए हैं, इस भव औषधि, औषधि कहते हैं दवाई को, इस भव रोग की औषधि क्या है, दवाई क्या है, तो कहते हैं भव औषधि श्रोत मनोभिरामा। इस भव रोग की औषधि, इसकी दवाई क्या है, बोलते हैं सुनना। क्या सुनना, तब कहते हैं उत्तम श्लोक गुणानुवादान। उत्तम श्लोक भगवान का एक नाम है, भगवान जिसकी महिमा वेदों के श्लोक के साथ गाई जाती है उसको उत्तम श्लोक कहते हैं। तो उत्तम श्लोक भगवान का गुण गाना, और ये भगवान के गुण गाए जाएं और उसको कोई अगर सुने तो ये बहुत बड़ी दवाई है, ये औषधि है। किसकी औषधि है, भवरोग। भवरोग का मतलब जन्म मृत्यु। इस दुनिया के अंदर सबसे बड़ी समस्या क्या है जिसका समाधान किसी के पास नहीं है, भगवद गीता में लिखा है जन्म मृत्यु जरा व्याधि दुख दोषानुदर्शनम। इस संसार की सबसे बड़ी समस्या है जन्म मृत्यु, जरा मतलब बुढ़ापा, व्याधि मतलब बीमारी, इनका किसी के पास कोई इलाज नहीं है संसार में। कोई आदमी बुढ़ापे से आपको बचा सकता है, मृत्यु से बचा सकता है संसार के अंदर? कोई मृत्यु से नहीं बच सकता है, कोई बुढ़ापे से नहीं बच सकता है, और कोई बीमारी से भी नहीं बच सकता है। एक बीमारी आएगी उसका इलाज करो तो दूसरी आ जाएगी। कोई जमाना था हमारे यहाँ माता चीचक की बीमारी होती थी तो परेशान हो जाते थे कि माता की बीमारी हो गई, माता की, तो माता की बीमारी में कुरूप आदमी हो जाता था, मर जाता था। कोई जमाने में तो टाइफाइड की बीमारी इतनी खतरनाक थी, उसमें अंदर भी कोई दवाई नहीं थी, लोग मर जाते। हमने टाइफाइड का इलाज निकालना, हमने माता का तो टीके लगा दिए, माता खत्म हो गई तो फिर टीबी आ गई, और टीबी ने हर 10 आदमियों के अंदर एक आदमी को टीबी है, 10 घरों में एक घर में टीबी है, तो इस टीबी ने चारों ओर से लोगों की मारामारी शुरू कर दी। हमने टीबी का इलाज निकाला है तो कैंसर आ गई। अब कैंसर का परेशानी के साथ इलाज निकालने का प्रयास कर रहे हैं तो इसके बीच में एड आ गई। तो ऐसे बीमारियां एक के ऊपर दूसरी आती रहती हैं, इस बीमारियों का समाधान इस संसार में अंदर हमारे पास नहीं है। अरे वैसे भी भगवान ने कहा कि पैदा तो सबको किया है ब्रह्मा जी ने, लेकिन ये सृष्टि के ऊपर कोई तो चाहिए जो सबको मारने के लिए भी हो, और ये मारने वाला काम देने के लिए भगवान ढूंढने के लिए गए। एक दिग्पाल को कहा कि ये मारने का काम आपको करना है, बोला महाराज ये मेरे से नहीं होगा, दूसरों को मारेगा कौन, ये काम तो मैं नहीं करूंगा, मृत्यु का काम तो बहुत बड़ा खतरनाक काम है, किसी का दोष कौन लेगा भैया, आपको तो करना पड़ेगा, किसी को तो मृत्यु बनना पड़ेगा, यमराज किसी को तो बनना पड़ेगा, तो यमराज बनना बहुत मुश्किल है, कोई बनने को तैयार नहीं है। तब भगवान ने कहा कि कोई बात नहीं, आपको हम कुछ ऐसे सेवक देते हैं बीमारी के रूप में जो जाएंगे लोगों को मारेंगे, कोई नहीं कहेगा कि कोई नहीं कहेगा कि आपने मारा है, बेचारे को बुखार आ गया, बुखार में बचा नहीं मर गया, इसको तो बेचारे को टीबी हो गई मर गया, तो लोग टीबी को निंदेंगे, बुखार को निंदेंगे, मारने वाले को याद नहीं करेंगे। तो मौत को ऐसी सारे मंत्री दे दिए जो जाके संसार में मारने का काम शुरू कर दी। गोविंद हरे कृष्ण। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। तो बात कर रहे थे कि भव रोग, इनका इलाज नहीं है संसार में किसी के पास, जन्म मृत्यु जरा व्याधि, बहुत बड़ा प्रयास कर रहा है संसार के अंदर, सबसे घिनौना पाप हो रहा है कि जन्म लेने से जीव आत्माओं को रोका जाने का बहुत बड़ा एक अभियान चल रहा है, कि जन्म किसी को लेने नहीं देंगे, बच्चे को पैदा होने से पहले मार देने का बड़ा कार्य कर किया जा रहा है पूरे विश्व के अंदर, लेकिन लोगों की संख्या कम तो नहीं हो रही है। ये लोग कहते हैं कि नहीं नहीं यहां संख्या बढ़ जाएगी तो खाएंगे कहां से। अरे भाई दूसरे पशुओं की संख्या कहां बढ़ रही है। अरे बिच्छू, एक बिच्छू 108 बच्चों को जन्म देता, अभी दिखते ही नहीं है, कहां गए बिच्छू सारे, उसकी किसी ने फैमिली प्लानिंग की क्या? हाँ, बिच्छू की कोई फैमिली प्लानिंग कहीं हुई थी क्या? एक कुत्ती 1-4 बच्चों को जन्म देती है, कोई कुत्ती का इलाज कर रहा है क्या? वो तो नहीं बढ़ रहे हैं संसार के अंदर, तुम मानव बढ़ जाओगे क्या? बहुत बड़ा विशाल अपराध पूरे विश्व के अंदर गौ हत्या और द्रोण हत्या के रूप में हो रहा है, और जिसके परिणाम रूप पूरे विश्व का दुख भोग रहा है। ये युद्ध के रूप में, अकाल के रूप में, सुनामी के रूप में, भूकंप के रूप में पूरा विश्व इसका परिणाम भुगत रहा है, जो हम प्रतिदिन उसका भागी हैं, जो ये बहुत बड़ा एक बहुत घिनौना पाप पूरे विश्व के अंदर हुआ जा रहा है। बाल को गौ, ब्राह्मण, बाल, वृद्ध, इनकी जो रक्षा नहीं कर सकता है, उनको राज और शासन करने का अधिकार नहीं है, शास्त्र कहता है। तो ये बहुत बड़ा एक अपराध का कार्य हो रहा है। तो कह रहे थे जन्म को रोकने का बहुत प्रयास विश्व कर रहा है, लेकिन जनसंख्या कम हो रही है ऐसा तो कहीं दिखाई नहीं दे रहा है। इसका अर्थ है कि जन्म, मृत्यु, जना, व्याधि, इनके ऊपर किसी का वश नहीं चलता। और वैसे भी रामायण ने आपने सुना होगा, जन्म मृत्यु जस अप जस विधि रखा अपने हाथ, ये तो भगवान के हाथ में, हमारे हाथ में नहीं है। जन्म किसी को देना, मृत्यु देना, किसी जीव आत्मा इस संसार में आना चाह रहा है, वो अपने कर्मों के अनुसार उसका हम रोक नहीं सकते, ये हिंसा कहलाती है। तो इनका कोई इलाज नहीं है, जन्म मृत्यु का कोई इलाज नहीं है। तो ये कहते हैं हाँ इलाज है, शास्त्र कहते हैं हाँ इलाज है, साधु संत का कर्तव्य भी ये होता है। संत बड़े काम को जगत में आते हैं, मिटा के खौफ मरने का अमर जीवन बनाते हैं। साधु संत महात्मा का एक ही उद्देश्य है कि मृत्यु के भय से मुक्त करके अमरता के पद को प्राप्त कराए। पहले जमाने में जब गुरुकुल में पढ़ने जाते थे गुरुजी के पास वेद अध्ययन के लिए बच्चे, तो जब वो स्कूल से बाहर वापस आते थे तो उनको पहली शिक्षा क्या दी जाती थी? एक ही शिक्षा सबसे बड़ी दी जाती थी, वेद का ये मंत्र सबको कहा जाता था, असतो मा सदगमय, अंधकार से सत की तरफ आगे बढ़ो, तमसो मा ज्योतिर्गमय, अंधकार से प्रकाश की तरफ चलो, असत से सत की तरफ चलो, मृत्योर मा अमृतम गमय, और मृत्यु से अमृता की तरफ चलो। ये शिक्षा दी जाती थी बच्चों को कि मृत्यु से बचो, अमृता की तरफ चलो, अमर बनने का प्रयास करो। और जब वापस बच्चे वहां से रवाना होते थे तो उनको कहते थे मातृ देवो भव, तुम घर जाओ तो तेरी माता मेरे लिए पूजनीय है, पितृ देवो भव, तेरा पितृ, तेरा पिता तेरे लिए पूजनीय है, आचार्य देवो भव, और जिसने तुमको शिक्षा दी है वो तुम्हारे लिए पूजनीय है। और फिर कहते थे अतिथि देवो भव, जो तिथि बताए बगैर तुम्हारे दरवाजे के ऊपर आ जाए उसका सम्मान करके और उसको भोजन कराओ। ये चार शिक्षाएं जब स्कूल से बच्चा वापस आया करता था गुरुकुल से तो उसको दी जाती थी। अब बताइए जरा कहां हो रहा है मातृ देवो भव, मां का सम्मान कहां रह गया संसार के अंदर? माताओं से जाके पूछो, बड़ी उम्र की माताएं जो घर में बैठी है उनसे जाके कभी विचार करके निकट बैठ के पूछो, जिन हाथों से लाखों की संख्या में गर्म गर्म चपाटी बना के बच्चों को खिलाई होंगी, अभी उनको कोई ठंडी पड़ी पड़ानी चपाटी दे के जान छुड़ाने का प्रयास किया जाता होगा, और वो माँ कहेगी ए भाई ठंडी क्यों है, बोला खा लेना, अब कौन गर्म करेगा तेरे लिए, अरे मेरे इन हाथों से लाखों चपाटी तुमको गर्म खिला दी थी। और सब लोग भूल गए मातृ देवो भव, कहाँ माँ का सम्मान, इस संसार में लोगों ने खत्म कर दिया, ये संस्कृति का सत्यानाश कर दिया, पितृ देवो भव, ये कुल साथ रहा करते थे, जो परिवार साथ रहा करते थे, संगठित रहा करते थे, उनकी बहुत बड़ी महिमा होती थी। ये महाभारत के अंदर, एक महाभारत के अंतर्गत एक कथा आती है, उस कथा के अंदर युधिष्ठिर महाराज प्रतिदिन भगवान के भजन के लिए, कृष्ण के स्मरण के लिए 2 घंटे बैठा करते थे। और जब भगवान के भजन के लिए 2 घंटे के लिए युधिष्ठिर महाराज बैठते थे तो अपने बाकी 4 भाइयों को दरवाजे के ऊपर खड़ा करते थे कि किसी की कोई समस्या हो, किसी के लिए कोई मसला हो जाए, कोई परेशानी हो जाए तो उसका समाधान तुरंत करना। ऐसे नहीं है कि फरियादी आए, कोई परेशानी अपने उठा के आए और उसका समाधान तुरंत उसी समय नहीं हो तो ये पांडवों के राज्य का नेम नहीं है। तो युधिष्ठिर महाराज भगवान श्री कृष्ण के स्मरण में बैठे हैं और बाहर भीम पहले दरवाजे पे खड़ा है, दूसरे पे अर्जुन खड़ा है, तीसरे के ऊपर नकुल और चौथे पे सहदेव खड़े हैं। अचानक समय का परिवर्तन होता है, एक व्यक्ति भागता हुआ आता है और भीम को पकड़ के कहता है महाराज युधिष्ठिर से मिलना है। तो भीम कहता है महाराज भगवान के स्मरण में है, आप बताइए आपकी समस्या क्या है, मैं आपकी समस्या का समाधान कर लूंगा। तब वो व्यक्ति कहता है कि महाराज अगर आप ही समस्या का समाधान करना चाहते हो तो सुनो, मैं रास्ते से आ रहा था और आते हुए मैंने देखा एक व्यक्ति कुएं के अंदर से पानी निकालने का प्रयास कर रहा था, कुएं के अंदर एक बाल्टी डाली, बाल्टी से पानी निकाला, पानी निकालकर आठ बर्तन थे, आठ मटके थे, आठ गाघर थी, आठ गाघर भर गई। बोला अच्छी बात है, कोई बहुत बड़ी बाल्टी होगी, बड़ा शक्तिशाली व्यक्ति होगा, पानी निकाल लिया, हो गया आठ मटके भर गए तो बहुत अच्छा हुआ। बोला महाराज ये नहीं, समस्या ये है कि आठ के आठ मटके वापस उस बाल्टी में डाले, वो बाल्टी आधी पड़ी थी, उसी बाल्टी से नौ मटके आठ मटके भर गए और आठ के आठ उल्टे करके वापस बाल्टी में डाले तो बाल्टी आधी पड़ी थी, बहुत बड़ी समस्या है। भीम कहता है ये बात तो बुद्धि की है, कोई पुरुष तुम्हारे को परेशान करता होता, कोई असुर होता, कोई दुष्ट होता तो हम तो उनको मारने में बड़े समर्थ थे, लेकिन ये तो इसका उत्तर महाराज ही दे सकते हैं, आप महाराज के पास पधारिए। आगे बढ़ता है, दूसरे दरवाजे के ऊपर अर्जुन खड़ा है और अर्जुन को जाके कहता है युधिष्ठिर महाराज से मिलना है। महाराज तो भगवान के भजन में है, अभी तो ये आधा घंटा गुजरा है, डेढ़ घंटा और लगेगा, आप बताइए आपकी समस्या क्या है। तब वो कहता है, व्यक्ति कहता है कि महाराज समस्या सुनना चाहे तो सुन लीजिए, मैं रास्ते से आ रहा था, एक बहुत बड़ा हरा भरा खेत था। बोला अच्छा खेत है, बड़ा अच्छा, कोई किसान होगा, बड़ा अच्छा उसने संभाल के रखा होगा। बोला हाँ महाराज खेत बहुत अच्छा था और खेत को चारों ओर से एक बहुत सुंदर बाड़ दी हुई थी। बोला अच्छा था, बाड़ दी हुई थी तो कोई पशु पक्षी जाएगा नहीं और खेत में अंदर जाके कुछ खाएगा नहीं, सुरक्षा के लिए बाड़ दी होगी। बोला हाँ महाराज बाड़ तो सुरक्षा के लिए दी हुई थी, लेकिन आपको हम ये समस्या सुनाते हैं, जो बाड़ दी हुई थी खेत को सुरक्षा के लिए, वही बाढ़ खेत को खा रही थी। अरे महाराज ऐसे कैसे होगा, वो बाढ़ खेत को खा रही थी। बोला महाराज खेत को बाढ़ खा रही थी, मैं ये देख के आया हूँ, आश्चर्य है, आप बताइए इसका समाधान क्या है। अर्जुन जी बड़े आश्चर्यचकित रहे कि गांडीव से कोई समस्या का समाधान होता तो मैं अभी धनुष उठा के तुम्हारा, जैसे ब्राह्मण के बच्चों की रक्षा करता था ऐसे आपकी रक्षा कर लेता, और ये तो पांडवों का व्रत है, किसी का दुख होता है तो उसका दर्द होता है तो एकदम उसका निवारण करने का प्रयास करते हैं, मैं तो इसमें आपकी सहायता नहीं कर सकता, आप महाराज के पास जाइए। अब आगे चल के ये व्यक्ति नकुल के पास आता है, नकुल बुद्धिमान व्यक्ति खड़ा हुआ है, कहता है बताइए क्या सेवा आपकी करूं। बोला महाराज से मिलना है। बोला महाराज आज एक एक घंटा और लगेगा, भगवान के भजन में है, आप बताइए मैं सेवा का क्या समाधान, आपकी क्या समस्या है। बोला समस्या तो महाराज हमारी ये है, मैं रास्ते से आ रहा था, मैंने देखा एक गाय ने बछड़ी को जन्म दिया। बोला गाय ने बछड़ी को जन्म दिया तो अच्छा हुआ, बछड़ा होता है तो लोग परेशान होते हैं, बछड़ी होते हैं तो समझते दूसरी गाय बन जाएगी, हमारा ये जो गाय का पूरा जो हमारा धन है ये बढ़ेगा, ये तो अच्छी बात है। बोला महाराज ये बात तो अच्छी है कि गाय ने बछड़ी को जन्म दिया, होना तो ये चाहिए था कि बछड़ी को गाय का दूध पीना चाहिए था, लेकिन गाय बछड़ी को खा गई। बड़ा आश्चर्य हुआ नकुल ने, बोला बछड़ी को गाय खा गई, ऐसे तो नहीं हो सकता, ये तो असंभव सी बात लग रही। बोला असंभव नहीं महाराज, मैं देख के आया हूँ, मैंने देखा गाय बछड़ी को खा गई। तो बोला महाराज से इस प्रश्न का उत्तर भी पूछ लो। आगे जाके सहदेव को देखता है बुद्धिमान, सहदेव देख के कहता है आइए आइए मैं आपकी क्या सेवा कर सकता हूँ। बोला महाराज आप सेवा क्या करेंगे, मुझे तो महाराज से मिलना है, युधिष्ठिर महाराज कहाँ है। बोला भजन में है, बस आधा घंटा है, अभी भगवान उठने वाले हैं, आप बताइए क्या सेवा करूं आपकी। बोला सेवा करना चाहते हो तो एक समस्या है। बोला क्या समस्या आपकी है। बोला समस्या है मैं रास्ते से आ रहा था, मैंने देखा एक आदमी छोटी सुई की अंदर जो सुराख था उसके अंदर से हाथी को गुजार रहा था, पूरा हाथी निकल गया लेकिन हाथी की पूंछ अटक गई। बड़ा हंसने लगा कि ये कोई बात है, सुई का सुराख इतना छोटा सा उसके अंदर से मोटा हाथी निकल गया लेकिन उसके अंदर पूंछ अटक गई। बोला महाराज ये तो मैंने देखा, इसी शंका का समाधान पूछने के लिए आपके पास आया। बोला ये तो इसका उत्तर महाराज युधिष्ठिर ही दे सकते हैं, मेरे बात समझ में बात नहीं आती, आप महाराज के पास जाएं। तब तक 2 घंटे पूरे होने वाले थे, महाराज एक पर्दे के पीछे भगवान के भजन में लगे हुए थे और ये व्यक्ति कहता है महाराज 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 मेरी शंका का समाधान करो। पर्दे के पीछे से कहता है महाराज एक बहुत दुर्गम पहाड़ का रास्ता था और पहाड़ की पगडंडी के ऊपर एक व्यक्ति एक समय चल सके इतना ही मार्ग था और तूफान आया, आंधी आई, वर्षा होने लगी, ऊपर से पत्थर गिरे, वो पगडंडी का रास्ता बंद हो गया, आना जाना बंद हो गया। और सुनिए महाराज समस्या ये है, कोई साधन नहीं था कि उस रास्ते को खोला जाए। और इतने में अचानक कहीं से एक संत पुरुष आया, एक साधु आया और उसने अपने गमछे को उठाया और अंगूठे से एक धागा निकाला और पत्थर को धागे में बांधा और ऐसे फेंका, पत्थर दूर चला गया और रास्ता खुल गया। महाराज ने कहा इसको पकड़ो पकड़ो पकड़ो, इसको मत जाने दो। तब तक ये तो व्यक्ति भाग गया। चारों भाई आके महाराज युधिष्ठिर के समक्ष खड़े हो गए, महाराज के सामने कहते हैं महाराज आप कहते पकड़ो पकड़ो, ये कौन था और ये कौन था और ये कैसे सवाल लेकर आया था, कैसे इसके प्रश्न थी, कैसी इसकी समस्याएं थी। तब महाराज युधिष्ठिर कहता है कि बताइए मैं आपको क्या बताऊं। भीम कहता है पहले तो ये बताइए कौन था और दूसरा ये बताइए कि ये समस्या क्या है थी इनकी। तब भीम कहता है कि महाराज मुझको तो आकर कहा था उसने कि एक व्यक्ति ने कुएं से एक बाल्टी पानी भर के निकाल के 8 मटके भर दिए और 8 मटके वापस उस बाल्टी में डाले तो बाल्टी आधी पड़ी थी, ये समस्या उसकी थी। महाराज युधिष्ठिर कहते हैं मेरे भाइयों ये कलयुग था, इसका समय आ गया है, ये हमें चेतावनी देने आया था कि कलयुग के भयंकर समय में भीम जो आपको उसने बताया है इसका अर्थ ये है, पहले एक व्यक्ति पूरे परिवार में कमाता था, 8 का पेट भरता था, पालन पोषण करता था, पढ़ाता था, लिखाता था, विवाह शादी करता था, दुकान मकान बना के देता था और कल जो कहता है अब 8 सदस्य इकट्ठे होके एक बाबा बीमार हो गया तो उसका इलाज कराने के लिए तैयार नहीं होंगे, उसको उठा के किसी बुढ़ा आश्रम में छोड़ के आएंगे, हरिद्वार छोड़ के आएंगे, विदुर आश्रम में छोड़ के आएंगे, बोले हमसे आपकी सेवा हो नहीं सकती है। तो कलयुग का पहला प्रकोप इस विश्व के ऊपर ये है, जो संगठित परिवार होता था उनको छिन्न भिन्न करके 2 में तोड़ के रख दिया और इसका बहुत बड़ा पूरा परिणाम यह हुआ। मानसिक रोग के विशेषज्ञ डॉक्टर कहते हैं कि संगठित परिवार हुआ करता था तो एक बीमार होता था तो दूसरा देखभाल कर लेता था और अगर एक किसी कारण से कहीं बाहर घूमने जाता था तो बाकी परिवार वाले काम करते थे, पिताजी डांटता था तो दादी की गोद में बच्चा छुप जाता था। अब सबसे बड़ी समस्या हम बाहर कहीं भी जाते हैं माताजी लोग आ कहती हैं बाबा जी महाराज प्रभु जी ऐसे करो, ये बच्चे बहुत बड़े हमारी बात नहीं मानते हैं, ये बहुत शैतान हो गए। हम पूछते हैं इसका दादा दादी घर में, बोला उनसे तो हम अलग रहते हैं। फिर हम यही कहते हैं हमारे पास इसका कोई इलाज नहीं है। बोला क्यों? बोले पहले पिताजी डांटा करते थे तो दादी जी उसको जाके गोद में बिठा लेती थी तो पिता का डर रहता था और दादी के प्रेम के वजह से वो शांत रहता। अभी पिताजी डांटता है, बच्चा रोता है, थोड़ी देर के बाद वही पिताजी कहते नहीं बेटा कोई बात नहीं, 2-4 बार ऐसे करता है, बेटा बोलते है रोज डांटता है रोज ऐसे करता है इसकी कौन सुनेगा। आस्ते आस्ते उसके मन से उसकी सुनने की उसका मान सम्मान अपने आप समाप्त हो जाता है। तो संगठित परिवार जो हुआ करते थे वो परिवार आस्ते आस्ते छिन्न भिन्न हो गए। ये कलयुग का बहुत बड़ा प्रभाव है, छोटे तुच्छ सुखों के कारण हमने असली सुख को बांट दिया। सब साथ बैठ के जहाँ साथ बैठते थे बड़ा कुल और बड़ा परिवार होता था उसका नाम और सम्मान होता था। तो 8 व्यक्ति को एक व्यक्ति पालता था। ये सत्संग हम एक जगह बताया तो कानपुर में एक व्यक्ति आके मुझे कहने लगा कि हम भी 7-8 भाई थे, हमारे पिता ने सबको पढ़ाया, सबको लिखाया, सबकी शादी की, सबको दुकान, सबको मकान दिया, बाबा जब बीमार हुआ तो एक भी उसको पालने के लिए तैयार नहीं था। वो बोलता फलाने के घर में जाओ, वो बोला उस भाई के घर में जाओ, वो छोटे के जाओ, बड़े के जाओ, ऐसे दर दर का धक्का खा के बाबा आकर हरिद्वार जाके मरा। तो ये कलयुग का सबसे बड़ा पहला प्रभाव है कि जहां भगवत भजन नहीं है वहां बड़ों का सम्मान नहीं है। और सबसे बड़ा तो भगवान है, जब तक भगवान घर में विराजमान नहीं करे तब तक बड़ों का सम्मान घरों से चला गया। इसका कारण केवल एक ही है कि भगवान को हमने घरों से विदा कर दिया। रायचूर, रायचूर एक स्थान है कर्नाटक में, कर्नाटक बेंगलोर से आते हैं तो महाराष्ट्र की तरफ आते हुए रायचूर एक स्थान है। तो रायचूर में एक घर में सत्संग करने के लिए गए तो सात बंगले थे साथ में, तो वो घर में भोजन के लिए गए तो उन्होंने एक फोटो दिखाया हमको, बोला ये हमारे 49 आदमी थे फोटो में, 50 से एक कम। तो हमने बोला ये आपके स्कूल कॉलेज का फोटो, बोला स्कूल कॉलेज का फोटो नहीं है, ये हमारे सात परिवारों का फोटो है। ये माँ ने बोला ये हमारे सात बेटे हैं और इनके ये परिवार हैं, ये हमारी बहू है, सात बेटे सात बहू और फिर पांच हमारे बच्चे, ऐसे हम 49 का परिवार है बहुत बड़ा, और हम ये सात इकट्ठे घर बनाए हैं इसमें रहते हैं लेकिन भोजन हमारा एक जगह बनता है। बोला ये संभव नहीं है माता जी, सात परिवार साथ कैसे रहते होंगे। तब हमको कहा बाबा ये तो बाद में देखिए, पहले आइए ये अंदर हमारा मंदिर है इसका दर्शन कीजिए। हम अंदर देखा तो बहुत सुंदर लक्ष्मी नारायण का मंदिर, बहुत सुंदर विग्रह लक्ष्मी नारायण के थे। माता जी भगवान को भोग लगाने के लिए प्रसाद ले गई थी, हमको कहा देखिए ये भगवान हमारे ठाकुर जी रहते हैं, प्रसाद पकता है, भगवान को भोग लगता है, सब परिवार बैठ के खाते खाते हैं, कारोबार सब करते हैं लेकिन सब साथ हैं। तो हमको कोई आश्चर्य उस वक्त नहीं लगा जब हमने देखा कि इनके घर में ठाकुर जी बीच में विराजमान है, जहाँ भगवान विराजमान है वहां सब साथ रह सकते हैं, जहाँ भगवान को विदा कर दिया वहां दो आदमी भी साथ रहे ये संभव नहीं। तो वो सात परिवार साथ रहते हैं, लक्ष्मी नारायण घर के मालिक है और बाकी सब सेवक है। ऐसे भगवान को घर में विराजमान करके, भगवान को भोग लगा के, परिवार को अगर आप प्रसाद खिलाओगे तो परिवार प्रेम के साथ साथ रह सकता, लेकिन जब से भगवान को भोग लगाया हुआ प्रसाद नहीं पाया जा रहा है। और प्रायः आजकल तो खाने का बाहर बहुत बड़ा प्रचलन हो गया है, चलो बाहर होटल पे खाएंगे, ढाणी पे खाएंगे, इधर खाएंगे उधर खाएंगे, और ये बाहर खाने ने हमारी बुद्धि को भ्रष्ट कर दिया है। ये हमारी जीभा जो खाने के चश्के के लिए इसको बहुत बड़ा चखने का शौक है, इस जबान से केवल चश्के के कारण मछली पकड़ी जाती है। मछली कैसे पकड़ते हैं, छोटा सा आटे की गोली तो देते हैं, कांटे के अंदर गोली खाते हुए कांटा पटक, तो ये हमारे लिए चारों ओर मछली का जैसे चारा है ऐसे कांटे वाला है। बाहर जाओगे खाओगे तो पकाने वाले की जो भावना है उस खाने के अंदर होती है, कॉन्शियसनेस ऑफ द कुक, जो पकाता है उसकी चेतना और भावना उस खाने में होती है। और माँ जो पका के अपने बच्चे को खिलाती है वो बच्चे के पोषण के लिए खिलाती है, लेकिन जो बाहर वाला रसोईया खिलाता है वो तो कहता है ये सर दर्द कहाँ से आ गया इस वक्त रात को 11 बजे, कौन इसके लिए 5 रोटी बनाएगा। सेठ को तो पैसा मिलता है लेकिन पकाने वाला तो 2-4 बुरे शब्द कह के फिर आपको देने के लिए तैयार होता है, तो वो तो बड़ा दुखी होता है। उसकी कॉन्शियसनेस उसके भोजन में आती है, वो खा के घर तक आता है तो घर में झगड़ा पहले आके शुरू करेगा। जब से ये बाहर खाने का प्रचलन हुआ है तब से लोगों के घरों के अंदर झगड़ा बहुत बढ़ गया। देख लेना अच्छी तरह से जाके इसके ऊपर चकास करके देख लेना, जबान के बांधे हुए लोग बाहर चले जाते हैं, ये जबान बहुत बड़ी खतरनाक है। इसके दो काम है, एक बोलना और एक चखना, और बोलने से ये बहुत झगड़ा करती है और चखने से ये आपको दर दर के ऊपर धक्के खिलाती है और इधर से उधर भटकने के लिए मजबूर करती है। बहुत खतरनाक है ये, छोटी सी है जबान है छोटी, कहते हैं जीभा तो तबलग भले ही जब लग जपई राम, नहीं तो काढ के फेंकिए भला नहीं मुख में चाम। ये चमड़े का टुकड़ा मुख में रखने की जरूरत क्या है, ये भगवान का भजन नहीं करती है तो ये संसार में भटका देगी। इसलिए भगवान की भक्ति जीभा से शुरू होती है, आदव जीभा, जीभा से शुरू होती है। अगर इस जीभा को भगवान का प्रसाद खिलाना शुरू कर दो और इस जीभा से भगवान का नाम जपना शुरू करो तो आपके जीवन ही बदल जाएगा, सब दुख ताप संताप समाप्त हो जाएंगे। इस जीभा को दो काम कराओ, मुख से राम का नाम जपो और इसको भगवान का प्रसाद खाने को दो। घर में चौके में शुद्ध भोजन तैयार होना चाहिए, ठाकुर जी का घर में मंदिर होना चाहिए छोटा सा, और प्रसाद की थाली पहले भगवान को भोग लगनी चाहिए और फिर सारे भोजन में मिलाकर पूरे परिवार को खिलाओ। ये प्रसाद औषधि है, ये प्रसाद औषधि है। जब कोई प्रेमी भक्त भगवान का भक्त बनने के लिए सत्संग के लिए आता है, जब संस्था के अंतर्गत, तो उसको दो बातें कही जाती है, कोई रोगी कभी डॉक्टर के पास जाता है तो डॉक्टर उसको दो बातें कहते हैं, बोला आपका रोग ये है, इसकी दवाई ये है, ये दवाई लेनी है मेरा भाई और इन चीजों से परहेज करनी है और ये आपको खाना है। डॉक्टर बोलता है ना, अगर आपको शुगर की बीमारी है तो बोलेगा मिठाई नहीं खानी है, और ब्लड प्रेशर है तो बोलेगा चिकनाई नहीं खानी है, और बोले नमक नहीं खाना है, कम खाना है। तो एक डाइट होती है, खाना होता है, और एक दवाई होती है, और एक परहेज होती है। तो जो इस विश्व के अंदर भगवत भक्ति में आगे बढ़ने के लिए आते हैं संतों के पास, तो संत शास्त्र की दृष्टि से कहते हैं आपकी दवाई, आपकी बीमारी की दवाई तो भगवान का नाम है। दवाई क्या है? सर्व दुखांदा औखद नाम, गुरबाणी में ये आता है, सब दुखों का औखद कहते हैं पंजाबी में औषधि को, औषधि को ओख शख हो जाता है, संस्कृत में भी शख हो जाता है, पुरख पुरुष, सब रोगों की औषधि या दवाई भगवान का नाम है। सर्व दुखांदा औखद नाम, सब दुखों की, सब बीमारियों की, सब परेशानियों की औषधि भगवान का नाम है। और खाना क्या खाना चाहिए? बोला खाना इस दवाई के साथ भगवान का प्रसाद खाना चाहिए। अगर भव रोग से मुक्त होना है, बात हमारी चल रही थी कि भागवत कथा सुनाने वाला कैसा होना चाहिए, सुखदेव गोस्वामी का वर्णन हो रहा था, संसारी लोगों का वर्णन नहीं हो रहा था। भव रोग औषधि, भव रोग की औषधि क्या है वो बात चल रही थी, और उस बात से इस औषधि के ऊपर आए हैं कि औषधि क्या, दवाई कौन सी होनी चाहिए। बोला भगवत नाम ही दवाई है सब बीमारियों की, जन्म मृत्यु जरा व्याधि रूपी रोग की बीमारी भगवत नाम है। नाम सुमरण से बीमारी समाप्त होती है। लेकिन खाना क्या चाहिए? बोला प्रसाद खाना चाहिए भगवान का। प्रसाद क्या है? जो भी शुद्ध सामग्री घर में पचती है, दाल चावल रोटी सब्जी जो भी पचता है, वो भगवान को भोग लगना चाहिए। तुलसी दल उसके ऊपर रख के, भगवान के सामने रख के हाथ जोड़ के बोलना चाहिए, ठाकुर जी ये आपका दिया हुआ आपको अर्पण करते हैं, आपकी कृपा प्रसाद हम सब पाए और हमारे घर के अंदर प्रेम से आपकी भक्ति बढ़े और हमारे घर से दुखों का निवारण हो, ऐसी प्रार्थना करके वो प्रसाद सब परिवार को खिला के देखो, परिवार में प्रेम बढ़ेगा, झगड़ा समाप्त हो जाएगा। जहाँ प्रसाद नहीं है वहाँ भोग है। और भगवत गीता तो ऐसा लिखती है, ये पचंती आत्म कारणात्, केवल जो अपने भोग के लिए पकाते हैं भगवान को भोग नहीं लगाते हैं, पापम चरती वो पाप खाते हैं, वो पाप खाते हैं। और लिखा है संत हां क्या संत हां मुच्यंती सर्व क्लबशी शिष्टासन है संतो मुच्यंते सर्व क्लबशी शिष्टा, शिष्टा का मतलब विशेष जो बचता है, साधु भगवान को भोग लगाने के बाद यज्ञ में अर्पण करने के बाद जो शेष बचता है उसको खाते हैं तो सारे रोगों से सारे दुखों से बहुत ही आसानी से पार हो जाते हैं। यज्ञ स्ना संस्त संतो मुच्यंते सर्वक्लबशी मुच्यंते छूट जानते सर्वक्लबश, क्लबश मतलब दुख ताप संताप से मुक्त हो जाते हैं क्योंकि वो भगवान का प्रसाद खाते हैं। ये पचंती आत्म कारणात, जो अपने ही खाने के लिए पकाते हैं भगवान को भोग नहीं लगाते हैं, पाप ही खाते हैं केवल स्ते नहीं तो पाप ही खाते हैं। तो प्रेम से भगवान का प्रसाद जबान को देने से, भगवान का नाम जपने से जबान बस में आ जाएगी, जिसकी जीभा बस में आ गई उसका सब कुछ बस में हो जाएगा, उसके लिए कोई मुश्किल नहीं रहेगा। तो भगवत प्रसाद खाना और भगवत नाम जपना ये इलाज है और ये दवाई। ये परहेज क्या है? चार चीजों की परहेज श्रीमद् भागवत बताती है। ये परहेज क्या है, चार चीजों की, कल इसके ऊपर चर्चा करेंगे, आज उस बात को आगे बढ़ाते हैं। पहली बात, भीम ने पूछा महाराज युधिष्ठिर से कि महाराज उसने तो कहा था एक बाल्टी से आठ मटके भर गए। बोला कलयुग था, एक परिवार में एक सदस्य आठ को पालता था, अब आठ मिलके एक का भी देखभाल नहीं कर पाएंगे, अगर वो काम करने के योग्य नहीं रहा। तब अर्जुन ने कहा, महाराज मेरी समस्या तो ये थी, मेरे को बोलना था बाढ़ खेत को खा रही थी। बोला अर्जुन, कल जो कह रहा था, पहले जमाने में रक्षा करने के लिए किसी को रखते थे तो वो रक्षा करता था, अब तो रक्षक ही भक्षक बन गया है। जिसको रक्षा करने की लगते हैं वही मार के चला जाता। जिसको दरवाजे के ऊपर दरबान रखा था, किसने मारा था प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी को? अंगरक्षक जो कुछ उसी ने गोली मारी थी ना, जिसको रक्षक रखा था उसी ने तो मारा था। इस वक्त चारों ओर से लूटा मारी कौन कर रहा है? जिसको हमने हमारे ऊपर शासन करने के लिए रखा है वही हमारा शोषण कर रहा है। जिसको शासन के लिए रखा है वही शोषण कर रहा है, कौन लूट रहा है? हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। हरि बोल, वहां भी कीर्तन हो रहा है। भगवान का कीर्तन नहीं करेंगे तो नहीं, कुछ मत कहो उनको बेटा, उनके कीर्तन को होने दो, वो भी कीर्तन है। ये कीर्तन नहीं होगा तो वो कीर्तन होगा, एक कीर्तन तो इस संसार में होना ही है, या भगवान का कीर्तन करो या फिर तो ये कीर्तन होगा जो आप सुन रहे हो। इस संसार में ये कीर्तन होते रहते। तो जिसको रक्षक किया है वही भक्षक है, ये बहुत बड़ी समस्या, बहुत बड़ी दुख की बात है। कौन ज्यादा बड़ा हंसे, हंसी की बात है, तीन पुलिस कमिश्नर साथ एक जहाज में जा रहे थे। अमेरिका का पुलिस कमिश्नर कह रहा था, हमारे देश में कहीं कोई अपराध हो जाए तो हम 24 घंटे में उस अपराधी को पकड़ लेते। तब यूरोप का स्कॉटलैंड का पुलिस कमिश्नर कहता है, आपको 24 घंटे बहुत ज्यादा लगते हैं, हमारे पास तो 12 घंटे में किसी को पकड़ लेते हैं अगर कोई अपराध कर ले। तो पड़ोसी देश का हमारा पुलिस कमिश्नर कहता है, अरे दोनों मूर्ख, 24-8 घंटे लगा तो हमें तो 7 दिन पहले पता होता है कि कौन अपराध कहां करेगा। हमें 7 दिन पहले पता होगा होता है कि अपराध करेगा कौन, क्योंकि हमारी अनुमति के बगैर कोई अपराध थोड़ी कर सकता है। एक बार एक बस लूटी थी कुछ डाकुओं ने एक जगह, हमने पेपर में पढ़ा था, बस को लूटा, सबसे 15,000 रुपये मिले। तो डाकू ने उठा के 15,000 सबके मुंह के ऊपर मारे, बोले लो उठाओ, इतने कंजूस 50 आदमी 15,000 रुपये नहीं चाहिए, उठाओ। तो कैसे ही एक बैठा था आगे महात्मा साधु, बोला क्यों भाई इतना, एक घंटा हमारा खराब किया, सबको लूटा, फिर पैसे क्यों फेंक रहे हो? को 20,000 रुपया बस लूटने का हमको सरकार को देना पड़ेगा, तब 5,000 घर का भरेंगे क्या कल? कल अगर किसी को पता हो गया कि एक बस रास्ते में लूटी गई है तो हमारे ऊपर तो 20,000 रुपया देना पड़ेगा, उस जहां एरिया जिसके अंदर हमने लूटा मारी की है, आपसे तो 15 मिलेंगे क्या, 5 हम घर से भरेंगे क्या? तो जिसको रक्षक करके हमने रखा हुआ है वो भक्षक चारों ओर से कर रहा है। और ये कोई आश्चर्य की बात नहीं है, श्रीमद् भागवत में कालयुग के लक्षण जहां कलयुग के लिखे हैं वहां 12वें स्कंद में ये लिखा हुआ है, जनपदा दस्यु। जो जनपद है उसमें जिसको आप शासन के लिए बिठाएंगे वो बड़े से बड़े डाकू होंगे, और इतना बड़ा टैक्स आपके ऊपर लगाएंगे कि आप के घर के ऊपर इतनी टैक्स लगाएंगे, हाउस टैक्स, के घर को ही मिटाना पड़ेगा कि टैक्स नहीं देनी पड़े। और अभी थोड़ा सा आप कभी विचार करके देखो, रोड के ऊपर 20 किलोमीटर जाना है और एक टोल टैक्स आया तो वो 75 रुपये लेता है, 60 रुपये का तेल और 75 रुपये टोल टैक्स, बताओ ये टैक्स ऐसी है कि गाड़ी में जाना छोड़ देंगे आदमी यहां से। हमें मालूम है 2 टोल टैक्स आते हैं तो 150 रुपया देना पड़ता है, और गाड़ी के तेल का खर्चा कभी कभी 200 रुपया होता है तो 150 रुपया टोल टैक्स हो जाता है। और जहाज का कभी किराया आपने देखा है, आजकल जो सस्ते जहाज का किराया होता है, मतलब 1 रुपये में सफर आप कर सकते हैं, जहाज 1 रुपये में चढ़ सकते हैं, उसके नीचे लिखा होता है 1500 रुपये तो पेट्रोल का खर्चा देना ही पड़ेगा, और 200 रुपये तो 300 रुपये टैक्स है, 15 और 3 1800 1 रुपये में आपका टिकट बनेगा। तो टैक्स कितनी है? 300 रुपये। आगे चल के टैक्स हो जाएगी 1800 रुपये और तेल हो जाएगा 300 रुपये। तो ये टैक्स है इतनी बढ़ेंगी कलयुग में कि लोग वाकई बहुत परेशान हो जाएंगे। और ऐसे लग रहा है ये कलयुग का एक बहुत बड़ा भारी प्रभाव पड़ रहा है कि जनपद दस्यु, जनपद के ऊपर सब डाकू बैठे होंगे, लुटेरे बैठे होंगे, लोगों के लिए भागने के लिए जगह नहीं बची जाएंगे कहां। तो तो अर्जुन को तो ये उत्तर दिया, तब नकुल आके कहते हैं महाराज मुझे तो ये कह दिया था कि गाय ने बछड़ी को जन्म दिया है, बछड़ी को दूध तो पिलाया नहीं और बछड़ी को खा गई। बोला कल युग आपको कह रहा था कि बहुत बड़ा भयानक और दुख का समय आने वाला है कि मां बेटी को जन्म देगी और देते ही मार देगी। बड़ा आश्चर्य लगा, लोग इस मानने को चीज को पहले जमाने में नहीं माना करते थे। हमें कहीं कोई ऐसी बातें सुनने को मिलती थी कि बच्ची के पैदा होने के ऊपर मां बाप ने उसको मार दिया, ऐसी किसी किसी जमाने में किसी किसी कहा जाए कि कुल में ऐसे हुआ करता था। लेकिन आजकल तो ये बहुत बड़ी समस्या हो गई है, अभी तो गर्भवती हुई नहीं है, डॉक्टर के पास जाके वो अल्ट्रासाउंड में के बच्चा है कि बच्ची है जरा बताओ डॉक्टर साहब, बच्चा है तो ठीक है रहने दो, बच्ची है तो नहीं चाहिए। तो ये कलयुग का बहुत बड़ा प्रभाव उस जमाने में बताया था कि बच्ची को जन्म देने से, अरे बच्ची को जन्म नहीं दोगे तो तुम कहां से पैदा होगे? कोई भी आदमी इस दुनिया के अंदर जो इंसान है वो राजा से लेकर और अवतार लेने के लिए भगवान भी आया है, तो एक माँ की आवश्यकता पड़ रही है, और जो कन्या है वही तो आगे चल के माँ बनेगी, तो माँ का जो सत्कार नहीं करेगा वो संसार के अंदर समाज अपने आप धराशाही हो जाएगा, समाप्त हो जाएगा, नष्ट हो जाएगा। जब से ये प्रक्रिया चली है और जब से संख्या कम होने लगी है लड़कियों की, ये बहुत बड़ी समस्या हो रही है हरियाणा के अंदर, लड़कियों की संख्या कम हो रही है और झारखंड और बिहार से लड़कियों को वहां से लाके बेचा जा रहा है, उधर विवाह के लिए बेचा जा रहा है। तो ये सारी समस्या जो है आगे चल के वर्ण शंकर बनने का कारण होगा, जिसका भगवत गीता में वर्णन हुआ है कि जब जाति धर्म और कुल धर्म का पालन नहीं होगा तब वर्ण शंकर संख्या संसार के अंदर पैदा होगी, और ये वर्ण शंकर जो होगी संसार को सुख से जीने नहीं देगी। और ऐसे वर्ण शंकर चारों ओर इतने फैले हुए हैं कि जीना लोगों का हराम हो गया है, रात की नींदें लोगों की उड़ गई है, ऐसे ऐसे स्थानों के ऊपर रहना परेशानी हो रही है, क्योंकि ये बहुत बड़ा कलयुग का प्रकोप इस हमारे समाज के अंदर बहुत बड़ा प्रभाव डाल रहा है। और तब चौथे ने आकर कहा, सहदेव ने, महाराज मुझको तो वो कह रहा था कलयुग रूपी पुरुष के सुई के सोराख के अंदर से हाथी गुजर गया और पूछ अटक गई। बोला भैया इसका अर्थ ये था कि कलयुग के अंदर लोग अपने दिखावे के लिए तो बहुत बड़े अठान बानक से खर्चा करेंगे, लाखों करोड़ों रुपया जन्मदिन और विवाह के ऊपर खर्च करेंगे, सुई के सोराख से हाथी गुजर जाएगा, लेकिन कभी उनके पास कोई गरीब जाके कहेगा कि भैया भूखा हूं एक रोटी दो, बोलेगा चलो चलो इतना बड़ा टुट्टा मुट्टा है खा नहीं सकता कमा नहीं सकता चलो यहां से धक्के उठने के बाहर निकाल देंगे। और कोई साधु पुरुष जाके कहेगा कि कुछ दान दीजिए, मानो के भगवत गीता का वितरण करना है, लोगों में ज्ञान का जो है छोटा सा पुस्तक छापने, बोला चलो चलो नहीं जरूरत नहीं है इसकी, लाखों करोड़ों रुपया अपने छोटे अन्ना की पूर्ति के लिए नाम के लिए खर्चा करेंगे लेकिन असली काम के लिए एक रुपया देने के लिए तैयार नहीं होंगे, हाथी तो गुजर जाएगा लेकिन पूछ अटक जाएगी। हमारे कभी लोग जाते हैं, भक्त लोग जन्माष्टमी है तो जाते हैं, भक्तों को कहते हैं भैया आप लोग कुछ हमारा सहयोग कीजिए, बड़ा उत्सव करना है जन्माष्टमी का, अथवा अभी ये कार्यक्रम भी यहाँ हो रहा है, वो हमारा देवेंद्र जी कुछ भक्तों के संग मिलके ये छोटा सा कार्यक्रम आयोजन किया है, तो किसी के पास गया होगा सहयोग के लिए। तो ऐसे भक्त किसी के सहयोग के लिए किसी सेठ के पास गया, सेठ जी तो गद्दी के ऊपर बैठे थे, पूछा हमको कुछ सहयोग की आवश्यकता है, तो सेठ कहने लगे अभी वहां आदमी नहीं है, आदमी नहीं है का मतलब जो मालिक है वो नहीं है। तो बेचारा भगत तो बड़ा ऐसे ही था, सरल था, बोला थोड़ी देर के लिए आप ही आदमी बन जाओ ना आदमी नहीं है तो आप कौन जो है यहाँ बैठे हो, गले के ऊपर बैठे हो, गद्दी के ऊपर बैठे हो, बोलते हो आदमी नहीं है, तो थोड़ी देर के लिए आप ही आदमी बन जाओ भाई। तो लोग पूछ इतनी अटके जाती है कि लोग आदमी अपने आप को कहने से मालिक भी अपने आप को बोलते मैं तो नेव हूँ, सेवक हूँ, यहाँ बैठा हूँ, मालिक अभी है नहीं, मालिक थोड़ी देर के लिए नौकर बन जाता है, इसको बोलते हैं पूछ का अटक जाना, हाथी तो गुजर जाएगा, जहाज हमारी शादी तो बच्चे की जहाज के अंदर होगी, हवाई जहाज में शादी होगी लेकिन जिसके नीचे जो भूख मर रहे हैं उनको दो रोटी भी देने को तैयार नहीं, इसको कहते हैं हाथी गुजर जाएगा और पूछ अटक जाएगी। और तब महाराज युधिष्ठिर से पूछते हैं आपको क्या कर रहे थे महाराज? बोला कल युग मुझे कह रहा था कि इस युग के अंदर भगवत प्राप्ति का मार्ग बहुत दुर्गम है, पगडंडी जैसा है, इसके ऊपर एक समय में एक आदमी चल सकता है और इस दुर्गम मार्ग के ऊपर भी बहुत बड़ी आंधी तूफान, चारों ओर से दुख और तकलीफ और परेशानियां बढ़ती जाएंगी, ये रास्ता बंद होने जैसा हो जाएगा। तब बोला ये तो मुश्किल काम है। तब बोला एक महात्मा साधु ने आकर अपने गमछे से एक धागा निकाला, धागे से पत्थर को बांधा और पत्थर को हटा के रास्ता साफ कर दिया। बोला इसका अर्थ ये है मेरे भैया कि कल युग में साधु के संग में केवल साधारण रूप से जीभा से भगवान का नाम लेने से कल युग के सारे रास्ते खुल जाते हैं, पगडंडी खुल जाती है और सारी मुश्किलों का आसान हो जाता है। तो कल युग में ये सारे पूरे इस आज के दृष्टांत में कल युग के सारे पाप ताप संताप एक तरफ, लेकिन ये भगवत नाम एक तरफ। इसलिए भागवत के 12वें स्कंद में सुखदेव गोस्वामी महाराज परीक्षित के सामने कलयुग का वर्णन करते हैं, तो महाराज परीक्षित दुखी होकर कहते हैं, हे महाराज बताइए कौन सा उपाय है मेरी ये जनता कलयुग के प्रकोप से बच जाए, कलयुग से ताप दुख संताप से बच जाए। तब सुखदेव महाराज परीक्षित जी को उत्तर देते हुए कहते हैं, कलेर दोषे निधे राजन, हे राजा कलयुग दोषों का घर है। निधे कहते हैं समुन्दर को, ये दोषों का समुन्दर है। महाराज तो बड़े दुखी हो गए, समुन्दर को कौन पार कर सकता है? आदमी कितना भी अच्छा तैरने में होशियार हो लेकिन समुन्दर तो पार नहीं कर सकता। समुन्दर पार करना एक व्यक्ति के बस की बात नहीं है। तब महाराज कहते हैं कि कलयुग क्या है? बोला कलयुग तो दुखों का सागर है, दोषों का सागर है। तो महाराज परीक्षित दुखी हो गए। तब मुस्कुराते हुए महाराज सुखदेव गोस्वामी कहते, अस्ति एको महागुण, इतने सारे दोषों के बीच में कलयुग में एक बहुत बड़ा महान गुण है। अरे परीक्षित महाराज कहते, महाराज जल्दी बताओ क्या है कलयुग में गुण, जिस गुण को हम सुन लें और हम सुनेंगे, हम राजा हैं, हम इसका आचरण करेंगे तो प्रजा पूरी इस गुण से सुख लेगी, हमको जल्दी बताइए, मेरा समय समाप्त हो। परीक्षित महाराज कहते हैं, और वो तक्षक आके मुझे खाए और मैं मृत्यु को प्राप्त हूं, उससे पहले वो महागुण मुझे बताइए ताकि मैं अपनी जनता का कल्याण करूं। तब सुखदेव महाराज के मुख से ये शब्द निकले हैं, अस्ति एको महागुण। बोला क्या महाराज? बोला कीर्तन कृष्णस्य मुक्त संग परम ब्रजेत। कीर्तन कृष्णस्य, भगवान श्री कृष्ण का कीर्तन मुक्त संग, संसार के सारे संगों से मुक्त कर देगा, दुसंग से मुक्त कर देगा। परम ब्रजेत, और परम पद तक ले जाके भगवान के चरणों में बिठा देगा। एक ही साधन कलयुग में बच गया है, भगवान के नाम का परम कीर्तन। तब परीक्षित महाराज कहते हैं, निवर्त तुर्षय उपगीय मानाय भव औषधि मनोविरामा श्रोत मनोविरामा का गुण उत्तम श्लोक गुणानुवादान। भगवान के गुणों को सुनना, भगवान के कीर्तन को सुनना, ये दवाई है। किस चीज की दवाई है? भव रोग की दवाई है, जन्म मृत्यु जरा व्याधि के रोग की दवाई है। बोला ये दवाई खाई कैसे जाएगी? कड़वी तो नहीं है, सुई की तरह तो नहीं लगेगी, बोला खाने की तो नहीं है। बोला नहीं नहीं, श्रोत ये तो कान से ली जाती है दवाई। इस दवाई को लेने के लिए न मुंह को कड़वा करना है, न शरीर के अंदर सुई लगाने की जरूरत है, ये तो भगवान के कीर्तन और कथा की दवाई श्रोत कान से ली जाती है। बोला कड़वी तो नहीं है? बोला मनोभिरामा, राम शब्द का मतलब है आनंद देना, ये तो मन को बहुत प्रफुल्लित करने वाली है, आनंदित करने वाली है। तब तो पूछते हैं परीक्षित महाराज के, ऐसी दवाई बहुत सुंदर है जो सुनने से ही भव रोग से मुक्त कर देती है, तो इसको लेनी कौन से डॉक्टर से चाहिए? आपको देखा कभी खांसी हो तो किसी भी डॉक्टर से दवाई ले आएंगे, मेडिकल स्टोर वाले से पूछ के भी गोली लेते हैं, लेकिन जब दिल का ऑपरेशन कराना होता है तो किसी डॉक्टर से नहीं पूछते हैं। और सबसे बड़ा डॉक्टर कौन है जो दिल का ऑपरेशन कर सकता है? फिर तो बंबई जाके करा के आएंगे ऑपरेशन, नहीं तो मद्रास चले जाएंगे। ऐसे तो नहीं है कि आबू रोड के अंदर दिल का ऑपरेशन तो कोई नहीं कराएगा। तो जब दिल का ऑपरेशन कराना होता है तो बहुत बड़े डॉक्टर को देखना पड़ता है। तो संसार सागर के भव रोग से मुक्त होना है तो कैसा डॉक्टर होना चाहिए? जिससे हम दवाई लेंगे कि हमारी बीमारी निकल जाए, दिल हमारा साफ हो जाए हृदय के अंदर से, जो हमारा चित्त कई जन्मों से दूषित है वो कैसे अंतःकरण की शुद्धि हो जाए, ये दवाई किससे लें। तब ये परीक्षित महाराज सुखदेव महाराज के लिए कहते हैं निवर्त दृश्य उपगीय मानाय। निवर्त दृश्य का मतलब है जिसको कोई तृष्णा नहीं है, कुछ संसार से लेना नहीं है, इसलिए भगवान की कथा बताता है। वो संसार को देना है इसलिए भगवान की कथा बताता है। कहां बैठ के बताता है? उपगीय मानाय, ऊपर भगवान की गोद में बैठकर भगवान के गुण इसलिए गाता है कि सबका कल्याण करना चाहता है। उसके मन में कुछ भी लेने की इच्छा नहीं है, कुछ पाने की इच्छा नहीं है। निवर्त दृश्य, उसकी तृष्णाएं सारी निवृत्त हो चुकी हैं। वो भगवत कीर्तन इसलिए करता है कि भगवान का गुणगान करना उसका जीवन का लक्ष्य हो गया है, उसको ये सेवा है उसकी जिसको वो करता है। इससे ज्यादा उसका कोई उसमें लेश मात्र भी मन में ये भाव नहीं है कि भगवान की कथा कीर्तन मैं इसलिए करता हूं कि मुझे कुछ मिलेगा। जिसके मन में ये भाव रहेगा वो हमारे भव रोग की दवाई नहीं कर सकता है, उसकी दवाई असर नहीं करेगी। ये तो भगवत कथा भगवान के भक्तों के मुख से, जो भगवान के गुणगान इसलिए करते हैं कि भगवान का गुणगान करना हमारा धर्म है, हम अपने धर्म का आचरण कर रहे हैं, हम किसी और उद्देश्य नहीं, और ये कथा करते ही भगवान को प्रसाद भगवान को अर्पण कर रहे हैं। और भगवान से लौटकर जब सुनने वालों के पास प्रसाद के रूप में आती है तब उनका उद्धार करती है। अगर ये कथा इसलिए की जाए कि लोग कहें कि महाराज बहुत अच्छी कथा करता है, बहुत अच्छा बोलने का तरीका है, तो फिर तो ये आपको खुश करने के लिए कथा हो गई कि गाया बहुत गा के सुनाई और बहुत कह के सुनाई, महाराज की महिमा हो गई, भगवान की महिमा तो नहीं हुई। तो ये कथा करने वाले के मन का भाव हो कि ये भगवान के, आपको मालूम है पुराने जमाने में जब संकल्प ब्राह्मण लिया करते तो कहते थे श्री कृष्ण प्रीति अर्थे पाठे विनियोग, भगवान श्री कृष्ण की प्रसन्नता के लिए मैं कथा कर रहा हूं, मैं सत्संग क्यों कर रहा हूं, भगवान की प्रसन्नता के लिए कर रहा हूं, भगवान की प्रसन्नता के लिए कर रहा हूं, भगवान को अर्पण कर रहा हूं। और भगवान से लौटकर प्रसाद के रूप में जब सुनने वाले श्रोताओं के कानों में पड़ेगा तो वो भगवान का प्रसाद पड़ेगा, हमारी वाणी नहीं पड़ेगी, भगवान का प्रसाद पड़ेगा। जब बाहर से कोई चीज आती है तो उसका नाम दाल चावल होता है, आलू होता है और दूध होता है, लेकिन प्रसाद होके जब वापस बन के आता है तो उसको दाल चावल कोई नहीं कहता है, उसको रोटी नहीं कहता है, उसको प्रसाद कहा जाता है। वो प्रसाद का अर्थ होता है कृपा। तो भगवान की कृपा के रूप में भगवान की कथा अगर किसी को मिल जाती है और उसके जीवन में भगवान के लिए स्नेह और प्रेम पैदा हो जाता है तो उस सत्संग का सद लाभ होता है। तो बात कथा की आज यहां से शुरू की थी, सत्संग का मतलब सत के साथ संग होना। सत तो भगवान ही है, परम सत भगवान है, सत्यम परम धीमहि, उस सत्य में हम सबकी बुद्धि निवास करे, ऐसा भागवत का पहला श्लोक है। तो वो परम सत्य की गुणगान करना, उसकी प्रसन्नता के लिए करना और सब सुनने वालों को उसका प्रसाद देना, उस प्रसाद से अंतःकरण की शुद्धि होगी। चित्त जब शुद्ध होगा तो भगवान आके उस चित्त में विराजमान होंगे, भगवान विराजमान होंगे तो जिसकी दिल में भगवान है। कल ये बात कही थी कृष्ण वाहक वसुदेव, वसुदेव जो कृष्ण को ढोता है, जन्म लेते ही छोटे बालक लाला कृष्ण को वसुदेव जैसे ही छाती से लगाता है तो फिर उसके सारे बंधन कट जाते हैं, बेड़ियां कट के नीचे गिरती हैं, पांव से लगी हुई जंजीर कट जाती है, दरवाजे खुल जाते हैं। तो जब भगवान को हृदय में निवास कराएंगे तो फिर संसार के सारे बंधन कट जाएंगे, सारे दुख तकलीफ ताप संताप समाप्त हो जाएगा। केवल एक बार भगवान को हृदय में आने के लिए निमंत्रण दीजिए और उसको बुलाइए, और बुलाने के लिए ये सुखदेव गोस्वामी ने भी कहा कीर्तन कृष्ण से, और ब्रह्मानी जी ने भी नारद को कहा कि भगवान श्री कृष्ण का 16 अक्षर का ये मंत्र कलयुग का महामंत्र है, सबका पाप ताप संताप हरने के लिए है। तो आइए इस 16 अक्षर के महामंत्र कली संत्र ने उपनिषद वेदों का ये मंत्र है, इसका उच्चारण करें और अपना जन्म सफल करें। हरे कृष्णा हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे।